ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में दिव्यता की खुशबू फैलाने हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। आप इंदौर की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1979 में इंदौर यूनिवर्सिटी से मेडिकल स्टडीज में आपने एमडी इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर से रिलेटेड है की डिग्री प्राप्त की। 1980 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और उसी दौरान आपका जाना विदेश में हुआ। वहां 10 वर्ष गयाना के जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल में रहकर आपने प्रैक्टिस की। फिर आप मुंबई लौट आए, कुछ वर्ष मुंबई और कुछ वर्ष आप अकोला में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर रहते सेवाएं दी। 1996 में जब यज्ञ डायमंड जुबली वर्ष मना रहा था, वह वर्ष आपके जीवन का स्वर्णिम वर्ष रहा, आप मधुबन आकर अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। शुरुआत में ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में 10 वर्ष रहते एज ए कंसल्टेंट आपने सेवाएं दी। वर्तमान में शांति वन के रहते आप एवर हेल्दी हॉस्पिटल में एज ए ऑनररी सर्विसेज दे रहे हैं। आपने पॉजिटिव थिंकिंग पर पुस्तक लिखी है। राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत मेडिकल विंग के आप एक्टिव मेंबर हैं। एक कुशल वक्ता होने के नाते हेडक्वार्टर के सभी परिसरों में आपके अनेक विषयों पर क्लासेस चलती है। आप भारत देश और विदेश भ्रमण कर ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा की है। आपने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल से जुड़ा हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉरपोरेट इंडस्ट्रियों में जाकर हजारों की संख्या में लोगों को सशक्त बनाने हेतु और अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल सके और नकारात्मक भावनाओं को ठीक करने हेतु आपने अनेक व्याख्यान दिए हैं। तो आज ऐसा प्रतिभावंत विभूति आज हमारे बीच में पधारे हैं। आज का विषय है शांति की शक्ति। इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता डॉक्टर प्रेम मसन जी।
ओम शांति। अगर हम देखें आत्मा के 7 गुणों में से जो मेन फाउंडेशन है वो है शांति, पीस। और शांति के ऊपर है थोड़ा और साइलेंस। दोनों कनेक्टेड हैं। हर गुण इंपॉर्टेंट है और हर गुण हमें शक्ति देता है। पर जो हमारा बेस है, रूट है, सीड है, वो है शांति। हमारा स्वधर्म भी शांत है, हमारा रहने का घर भी शांति धाम है, परमात्मा भी शांति का सागर है और हमारा स्वरूप भी शांत स्वरूप है। तो जितना हम इस गुण की प्रैक्टिस करते हैं, उसको अनुभव में लाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये गुण बढ़ता जाता है। और इसी गुण पर दूसरे गुण भी आधारित हैं, बेस्ड है। अगर ये गुण हमारा अच्छा है तो कई तरह के जो नेगेटिव प्रोग्राम हमारे अंदर चले जाते हैं, थिंकिंग के, एंगर के, चिंता के, गुस्से के, वो कम होते जाते हैं। वो नेगेटिव प्रोग्राम इसीलिए खुलते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे में शांत रहने की प्रैक्टिस कम है। शांति का अर्थ केवल ये नहीं है कि जब मैं बैठा हूं शांत हूं। शांति का अर्थ है अशांति में रहते हुए भी शांत हूं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम आत्माओं के बीच रहता है, कार्यक्षेत्र पर रहता है, घर पर रहता है, सेंटर पर रहता है, हर जगह जो तरह तरह की इवेंट हो रही है, खेल हो रहा है, नाटक चल रहा है, अलग अलग एक्टर खेल खेल रहे हैं, उनसे मैं प्रभावित न हो रहा हूं, उनका असर मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, चाहे उसमें 99 नेगेटिव हैं, पर मैं एक पॉजिटिव हूं, उसी को कहते हैं शांत स्वरूप रहना। दूसरा डेफिनेशन हो गई कि जो दूसरे मेरे को रिमार्क दे रहे हैं, उन रिमार्क में पॉजिटिव है नेगेटिव है, उन रिमार्क्स का भी असर मेरे ऊपर न हो रहा है, जो आज का स्लोगन था साक्षी रहना है। आज की मुरली में देखें, एक था शांति के ऊपर, शांति के सागर के ऊपर, दूसरा था स्लोगन जो साक्षी होकर रहना है। यह सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये वर्ड को अगर हम डिसेक्ट करें, रिसर्च करें, तो काफी चीजें निकल कर आएगी। लोग हलचल में है, तनाव में है, पर मैं अपना गेम साक्षी होकर देख रहा हूं। साक्षी का अर्थ है डिटैच ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का अर्थ है कि मैं हर चीज को देख रहा हूं कर्म क्षेत्र पर, सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल को प्ले कर रहे हैं, जो जैसा रोल प्ले कर रहा है उसका इफेक्ट मेरे ऊपर न आ रहा है, तब मैं शांत स्वरूप रह सकता हूं। शांति डिस्टर्ब तभी होती है जब हम अपने स्वरूप को, स्वधर्म को, स्वदेश को, स्वलक्ष्य को, स्वलक्षण को छोड़ देते हैं। जब मुझे याद रहता है कि मेरा घर भी शांति धाम है, मैं वहां से आकर पाठ बजा रही हूं, अलग अलग जन्मों में अलग अलग पाठ प्ले किया, और हर मेरे पाठ में मैं अपने निजी गुण से पाठ को प्ले कर रही हूं। जितना हमारा शांत स्वरूप रहता है उतना हमारे वाइब्रेशन भी शांति के रहते हैं। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज के समय, प्रेजेंट टाइम में, जब प्रकृति की हलचल चारों तरफ चल रही है और हम देख रहे हैं प्रकृति फुल फॉर्म में चल रही है, कई देशों में इफेक्ट देख रहे हैं, हमारे देश में भी देख रहे हैं, पर उसकी भी हलचल को देखते हुए मेरे वाइब्रेशन डिस्टर्ब न हो रहे हैं। एक राजा था, हाथ उठाए और कहे मैं शांत स्वरूप हूं, I am healthy, I am wealthy, I am beautiful. इस समय सब कुछ ठीक है, इस समय मैं यहां पर हूं, इस हॉल में हूं, अपने कमरे में हूं। उस कमरे में रहना ही शांत स्वरूप है। जब कभी भी मैं अपना कमरा छोड़ता हूं उसको फील करें तो अशांत होता हूं। हरेक को परमात्मा ने एक कमरा दिया हुआ है, वो अपना निजी कमरा है। आत्मा जब उसमें बैठी रहती है तो शांत रहती है। आत्मा जब उस कमरे से बाहर देखती है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा सुनती है, फील करती है, पांच इंद्रियां उसको पुल करती है, खींचती है। इसीलिए वरदान भी था कर्म इंद्रियों के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आप लोग सभी आए हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपना टाइम दिया है, और सबसे बड़ी बात है पांडव भवन में तपस्या कर रहे हैं, अपने खाने पर, डाइट पर भी कंट्रोल करना। जितना डाइट पर कंट्रोल होगा उतना एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे। तीनों टाइम खाना मिलेगा, पर वो देखना है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है उतना ही लेना है। तो माइंड पूरा काम करेगा, ब्रेन पूरा काम करेगा। जब हेवी खाना खाते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ा आता है। तो ये तीन दिन अपने ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल करना, जितना मैं अपने कर्म इंद्रियों पर विजय पाता हूं उतना शांत स्वरूप रहता हूं। तो एक राजा था, उसको पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती थी, और उसने घोषणा करी कि मेरे को जो अच्छा चित्र बनाकर देगा स्वर्ग के ऊपर, हेवन के ऊपर, उसको मैं प्राइज दूंगा। और उसमें शांति का डिपिक्ट होना चाहिए। कई चित्रकार ने चित्र बनाए और अच्छे अच्छे चित्र बनाए, मेजॉरिटी ने स्वर्ग का मॉडल बताया, सब चीज अच्छी है, प्रकृति अच्छी है, बर्ड्स, बगीचा, पानी, झरना, फल, पर एक चित्रकार ने, जिसको राजा ने सिलेक्ट किया, उस चित्र में बहुत बारिश हो रही थी, हेवी रेन्स था, तूफान था, बिजली चमक रही थी, और उस पहाड़ के एक छेद में, होल में, एक पक्षी अपने बच्चे के साथ बैठा देख रहा था। राजा ने उसको प्राइस दिया। लोगों ने पूछा, इतने अच्छे चित्र थे पर आपने ये चित्र क्यों सिलेक्ट किया जिसमें टोटल हलचल है? तो राजा ने कहा, शांति का अर्थ ही होता है प्रॉब्लम होते हुए, कंफ्लिक्ट होते हुए, हलचल होते हुए शांत रहना। इसीलिए बाबा का शब्द है स्वरूप में लाना। केवल बोलना नहीं है, अगर हम देखें एक संडे और लास्ट संडे की मुरली और उसके संडे की मुरली, तीन संडे की मुरली में देखें तो बाबा ने कहा एक नंबर और दस नंबर। बाबा ने कहा दस नंबर उसको मिलते हैं जो धारणा में लिया आता है, स्वरूप में लिया आता है। दस नंबर उसको मिलते हैं जिसको चांस मिल रहा है सेवा का, पर वो दूसरे को आगे बढ़ा देता है, उसको दस नंबर मिलते हैं। तो मेरे को भी अपना एनालिसिस करना है कि मैं बाप समान बनता जा रहा हूं और धारणा में ला रहा हूं कि नहीं। केवल बोलना, लेक्चर देना वो एक काम है, पर उसको प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, एक्सपेरिमेंट करना, वो दस नंबर है। मैं कुछ कर नहीं सकता फिजिकली, पर मैं धारणा में लाता हूं और अच्छे वाइब्रेशन देता हूं, मेरे को दस नंबर मिलेंगे। तो हमेशा अपनी धारणा में उसको लाते जाओ। हम सभी ने देखा यज्ञ जब यहां पर आया, शिफ्ट हुआ, ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने तपस्या करी, कंटिन्यूस तपस्या की, वहां भी की यहां भी की। उस समय सेवा का पार्ट नहीं था, सब लोग अपने अंदर बैठकर तपस्या करते थे। जंगल था, कुछ नहीं था, थिक फॉरेस्ट था, सांप स्नेक्स घूमते रहते थे, कभी कभी अंदर भी आ जाते थे, पर हमेशा ब्रह्मा बाबा कहते थे जाओ बच्चे को छोड़ के आ जाओ। क्या था? वाइब्रेशन था। वाइब्रेशन हमारे अगर शांत स्वरूप के हैं, पीसफुल हैं, तो प्रकृति भी हमें सहयोग देती है, चाहे वो नुकसान नेगेटिविटी कर रही है, पर अगर मेरे वाइब्रेशन पावरफुल हैं, पीसफुल हैं, तो मेरे पास से चली जाएगी और वही शांति की शक्ति है। शांति की शक्ति में इतना पावर है कि हम अपने शरीर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शरीर में भी कई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो वहां शांति के वाइब्रेशन देकर ठीक कर सकते हैं। काफी बीमारियों का कारण अगर हम देखें आज के समय, व्यक्ति खुद होता है। मैं कहूं 99% बीमारी का कारण आज व्यक्ति खुद है, 1% बीमारी का कारण खाना, डाइट, जीन्स हैं, इन्वायरमेंट है, बाकी मेजर कारण मैं खुद हूं, मेरी अपनी लाइफस्टाइल है। अगर मैं हर समय अशांति रहता हूं, हर समय अपसेट होता हूं, हर समय इरिटेट होता हूं, हर समय गुस्सा रहता है, हर समय चिंता करने का नेचर है, हर समय ज्यादा सोचने का नेचर है, तो शरीर भी बीमार होगा। हमारे यहां जो होता है हमारी आत्मा में, वो शरीर में होता है। जो कुछ वीक पहले बाबा ने कहा, आत्मा बीमार होती है तो शरीर भी बीमार होता है। आत्मा कैसे बीमार होती है? आत्मा बीमार होती है जब वो अपना ओरिजिनल नेचर स्वरूप धर्म को छोड़ती है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है डिसईज। डिसईज का अर्थ क्या हुआ? डिसईज, इसमें दो शब्द हैं, ईस और डीआईएस, डिस। ईस का अर्थ है मेरी शांति, प्रेम, खुशी। जब मैं वो छोड़ देता हूं तो मेरा डीआईएस चालू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ के लिए पांव गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा तो आपकी हेल्थ अच्छी। अब क्या हो गया? पांव हो गए ठंडे, पेट हो गया टाइट, सिर हो गया गर्म। तो व्यक्ति कहां से भाग रहा है? विचारों से भाग रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय जो चल रहा है, जो मैं देख रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। फुल स्टॉप लगाना ही शांत स्वरूप है। कितनी डेफिनेशन हो गई? हलचल है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर मैं उसको रोक पा रहा हूं। फिर से हाथ उठाएं और कहें, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति का सागर मेरे साथ है। अपने पांच स्वरूप को इमर्ज करिए। पहला, मैं आत्मा, लाइट, सितारा हूं। मैं देवता, प्यारा हूं। मैं ईष्ट, न्यारा हूं। ब्राह्मण, राज दुलारा हूं। फरिश्ता, बाबा का प्यारा हूं। फरिश्ता कैसे होता है? हल्का, उड़ता है। फरिश्ते का अर्थ क्या हुआ? हल्का, लाइट, बेफिकर बादशाह, चिंता नहीं। देवता कैसे होते हैं? देवता हर्षित मुख रहते हैं। अभी आप लोग देखो अपने को, मैं हर्षित मुख हूं कि नहीं हूं, देखो। देवता जगा हुआ रहता है, देवता वर्तमान में रहता है। अपने को देखो, एक दूसरे को देखो अभी। सब ठीक है? हर्षित मुख हैं? एक दूसरे की तारीफ करो, बहुत अच्छे हो, सो गुड। बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, 5000 वर्ष बाद मिल रहे हो। सत्युग में क्या होता है? सेलिब्रेशन, त्योहार, हर दिन त्योहार है। परमधाम में क्या रहते हैं? शांत, वहां कोई हलचल नहीं होती। वो एटॉमिक एनर्जी का सेंटर है। परमधाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी है। आत्मा क्या है? एटॉमिक एनर्जी है। सत्युग और त्रेता क्या है? एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है। जो मैं यहां कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ यहां कर रहा हूं, मेरी प्रारब्ध सत्युग और त्रेता है। अगर मेरा यहां पुरुषार्थ ठीक नहीं है, तो सत्युग और त्रेता भी मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा। इसलिए पूरा फोकस मेरे को क्या करना है? यहां पर संगम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है पूरे कल्प का, जहां हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां की प्रैक्टिस मेरे को वहां पर रिजल्ट देगी। मेरी जितनी प्रैक्टिस अशरीरी की अच्छी होगी, निराकारी स्वरूप की रहेगी, तो मैं शांत रहूंगा। मैं किसी को देख रहा हूं, उसको शुभ भावना शुभ कामना दे रहा हूं। शुभ भावना और शुभ कामना देना भी शांत स्वरूप है। शुभ भावना शुभ कामना वही दे सकता है जो शांत है। बीमारी का दूसरा मुख्य कारण एक हो गया इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव। ये मेजर कारण है आज के समय। दूसरा कारण जल्दीबाजी करना, हर काम हलचल में करना, खाना खाना भी तो हलचल में खाना। तो क्या होगा, खाना पकेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा और वो बीमारी देगा। तो जब खाना खाना हो वो शांत होकर खाओ, प्यार से खाओ, खुशी से खाओ, तो वो खाना ताकत देगा। ये देखा गया ज्यादा डिपेंड करता है, हम क्या खा रहे हैं वो तो डिपेंड करता है, पर हम कैसे खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक डॉक्टर ने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप क्या खाना खा रहे हो, पर उसने कहा कि आपको क्या खा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अल्सर आता ही इसीलिए है कि मेरे को कुछ खा रहा है अंदर ही अंदर। कोई बात को पकड़कर मैंने अंदर रख दी है, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो क्या करना है, छोड़ना आना चाहिए, साक्षी होकर रहना है और फुल स्टॉप लगाना है, तो तब शांत रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा संगम पर कि हर चीज ठीक है। हर चीज ठीक होगी सत्युग और त्रेता में, वहां परफेक्ट होगी, वहां हमें कुछ नहीं करना पड़ता। प्लेन में बैठा हूं अपने प्लेन में, मेरे को मेरा प्लेन ले जाएगा जहां मुझे जाना है, उसको मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, न चाबी लगाना पड़ेगी। मैं खड़ा होऊंगा और मुझे ले जाएगा जहां जाना है, वो परफेक्ट है, संपन्न है, संपूर्ण है। पर यहां पर क्या है, सब तरह के प्रॉब्लम है, कंफ्लिक्ट है, पर उसके बीच में मैं स्थिर हूं। वो प्रॉब्लम मेरे को खींच नहीं रहा है। बीमारी भी है तो भी ठीक हूं। मुझे हमेशा याद आता है दादी गुलजार जी का, हमारी आदरणीय दादी जी का। जब कोई भी उनके पास जाता था और कोई प्रॉब्लम बताता था, चाहे वो कहती थी कि मैं अभी हॉस्पिटल से आई, मेरे को ये बीमारी है, दादी जी कहती थी क्या बड़ी बात है, हर कोई बीमार होता है। दादी जी की भी जब सर्जरी हुई, और डॉक्टर पहले दिन उनको देखने गया सर्जरी के बाद, तो डॉक्टर सोच रहा था कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को नहीं मालूम था ये दादी जी कौन है, उसने तो ऑपरेशन किया था। जब वो डॉक्टर गया दादी जी के कमरे में तो दादी जी ने पूछा, डॉक्टर आप कैसे हो? और वो देखकर डॉक्टर माउंट आबू आया था और वो देखकर डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि यहां पर हॉस्पिटल बनना चाहिए और तब ग्लोबल हॉस्पिटल बना। तो ग्लोबल हॉस्पिटल कैसे बना? दादी जी का हॉस्पिटल जाना और ग्लोबल हॉस्पिटल का बनना। क्या निकला एनालिसिस? हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद है, पर्पस है, मिशन है। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, मकसद है, मिशन है। तो उस प्रॉब्लम को देखकर हम घबरा नहीं जाएं, अपसेट नहीं हो जाएं, इरिटेट नहीं हो जाएं। वो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए आया है, चला जाएगा। पर मैं अपसेट हो गया, इरिटेट हो गया, तो मैं फेल हो गया। उसमें मेरा सूक्ष्म अहंकार, ईगो नहीं होना चाहिए। जहां मैंपन है और मेरा है वहां तकलीफ है, दुख है, तनाव है, अशांति है, क्लियर कट। और जहां मैंपन नहीं है वो करारा है, मैं कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, तो वहां कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सूक्ष्म ईगो को चेक करना ही शांत स्वरूप है। मैं एक बार बाबा के दिनों में हॉस्पिटल जा रहा था सुबह मुरली के टाइम, कोई दवाई उठानी थी, किसी को देनी थी, और मैंने देखा वहां वर्कर्स सफाई कर रही थी, पोथा लग रहा था। और आपको मालूम है उनके बीच में अगर पोथा लगाते हुए कोई जाए तो वो, मैंने देखा लग रहा है पर दवाई भी उठानी है और उनको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। तो मैं धीरे धीरे बचते हुए दवाई उठाई और बाहर निकल रहा था। फिर भी वो थोड़ा सोच रही थी, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। अगर वहां मैं बोलता मैं कौन हूं तो मैं मैच हार जाता। मैं शांत स्वरूप होकर बाहर आ गया। बाद में जो फार्मासिस्ट था उसने बताया और मैं आ गया। तो उन छोटी छोटी बातों में भी हम अपने माइक्रो ईगो को, अहंकार को जब छोड़ते हैं तब हम शांत स्वरूप रहते हैं। अहंकारी व्यक्ति को खत्म करता है। अहंकारी कई तरह के प्रॉब्लम ले आता है। आज जो प्रॉब्लम आ रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस के, फ्रोजन शोल्डर के, घुटनों के, जो बहुत कॉमन हो गए हैं, उसका भी एक मेन कारण हमारा बार बार मोबाइल देखना, गर्दन नीचे, टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना, ओवरयूज करना, दूसरा अहंकार। जब कभी भी अहंकार आता है ये मसल टाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति सोचता मैं ही हूं। और यहां पर बाबा ने सिखाया मैं एक आत्मा हूं, लाइट हूं, प्रकाश हूं, एनर्जी हूं। बार बार उस एनर्जी और वाइब्रेशन में टिकना, आत्मा का अर्थ ही है मैं एनर्जी हूं, कॉन्शियसनेस हूं। खड़े हो जाएं।
जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा।
एक एक्सपेरिमेंट में आदरणीय दादी जानकी जी और यूरी गैलर, एक साइकोपैथ उस समय का रहा, 1997 में लंदन में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए गए दोनों को और दोनों इलेक्ट्रोड कंप्यूटर पर कनेक्टेड थे। दादी जानकी और यूरी गैलर एक दूसरे को देख रहे हैं। करीब 45 मिनट तक देखते देखते ये देखा गया कि ब्रेन वेव्स दोनों की एक हो गई। जो ब्रेन वेव दादी जानकी में थी वही ब्रेन वेव यूरी गैलर की भी आने लगी। ये क्या दिखाता है? ट्रांसफर हो सकता है। जो बाबा हमें सिखा रहा है, समय ऐसा आएगा जब कुछ काम नहीं करेगा, तब केवल शांति के चुंबक बनकर, शांति के कुंड बनकर हमें आत्माओं से बात करना है और वाइब्रेशन देना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति हमें देनी है और वो मैं देख रहा हूं समय चलता जा रहा है। जो प्रकृति की हलचल पूरे विश्व में इस समय चल रही है, कई शहर, एक शहर पूरा का पूरा पानी से मैंने देखा और दूसरा अर्थक्वेक से पूरा शहर में, इतने अच्छे मकान एक सेकंड में एक मिनट में धराशायी। तो वो बाबा ने हमें सब बता चुका है कि ऐसा समय आएगा, इसलिए हमें तैयारी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और ये जो समय हमें दिया गया है उसमें हम अपने ऊपर अभ्यास करें, एक्सपेरिमेंट करें, भागे नहीं। बिना कारण से भाग रहे यानी अशांत है। आजकल तनाव का हम एक कारण बताते मुख्य, उसका इंग्लिश है FOMO, FOMO, फोमो। किसको मालूम है बताए पूरा मीनिंग फोमो का? फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ, एफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का अर्थ क्या? आजकल हरेक को चाहिए सोशल स्टेटस, मेरी स्टेटस, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, वहां भी जाऊं, यहां भी जाऊं, मैं मिस नहीं हो जाऊं, वो नहीं करना है, वही करना है जो मेरे जीवन के मकसद से जुड़ा हुआ है, तब एनर्जी सेव होगी। ये पूरा खेल जो हम खेल रहे हैं एनर्जी का है, वाइब्रेशन का है। मैंने ये देख लिया, जितना मैं अपनी एनर्जी को सेव करूंगा, बिना कारण से इसको वेस्ट नहीं करूंगा, उतना मैं लोगों को दे पाऊंगा। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में गैप है, एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में गैप है, वो गैप ही यूनिवर्स है, वो गैप ही विश्व है। और उस गैप में जाकर मैं पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्स को वाइब्रेशन देता हूं, और जितना मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो मैच मैं जीतूंगा। फिजिकल सेवाएं का एक लिमिट है, पर मेंटल मनसा सेवा का कोई लिमिट नहीं है। एक बार लॉर्ड गौतम बुद्धा भ्रमण कर रहे थे और एक गांव में आकर रुक गए। उनको दूसरे गांव जाना था, बीच में जंगल था। सुबह उठकर वो जाने लगे तो गांव वालों ने कहा, इस रूट से मत जाइए, इस जंगल में उंगली मार रहता है, वो सबकी उंगली काटकर उसकी माला पहन लेता है, बहुत डेंजरस डेकॉइट है। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इधर से ही जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। वो उस जंगल से चल पड़े। जैसे ही उंगली मार को पता लगा कोई आ रहा है तो वो बाहर आया। लॉर्ड गौतम बुद्धा चलते रहे, उंगली मार उनको पकड़ने के पीछे भागा, पर वो पकड़ नहीं पा रहा था। लॉर्ड गौतम बुद्धा चलते जा रहे थे, ये भाग रहा है, वो चल रहे हैं। आखिर थक गया उंगली मार, तो उन्होंने लॉर्ड गौतम बुद्धा को कहा, रुको। तो लॉर्ड गौतम बुद्धा पीछे मुड़कर उसको बोले, वही तेरे को मैं समझाने आया हूं, तू अब रुक जा। तू जो भी कर रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है, उसकी भरपाई तू नहीं कर सकता। फिर लॉर्ड गौतम बुद्धा ने उसको कहा, जा पेड़ में से 5 पत्तियां तोड़ कर ला। वो तोड़ कर लाया, बोला, अब जाकर इसको लगा दे। बोला, लगा नहीं सकता। फिर लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, जो तू लगा नहीं सकता तो तेरे को कोई अधिकार नहीं है किसी को डैमेज करने। बाद में उंगली मार उनका बहुत पावरफुल शिष्य बन गया, डिसाइपल बन गया, और जंगल का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। लॉर्ड गौतम बुद्धा जब चल रहे थे, उसको पकड़ नहीं पा रहा था, वो लॉर्ड गौतम बुद्धा नहीं थे, उनका सूक्ष्म शरीर चल रहा था, वो लाइट चल रही थी। वो शांत स्वरूप में जब अनादि स्वरूप में टिक गए तो वो लाइट थी। जब हम अपने अनादि स्वरूप में टिक जाते हैं तो वो ऑरा, वो एनर्जी हमें घेर लेती है। और वो हम सभी ने देखा, दादियों को देखा, जब बड़ी दादी आती थी या हमारी सभी दादियां स्टेज पर आती थी, दादियां नहीं दिखती थी, लाइट दिखती थी, ऑरा दिखता था। और वही ऑरा की प्रैक्टिस, वाइब्रेशन की प्रैक्टिस हमें करते जाना है। और जितना हम प्योर होते जाएंगे, संकल्प बोल कर्म में ट्रांसपेरेंट होंगे, ट्रांसपेरेंट का अर्थ है अंदर बाहर एक हूं, जो अंदर हूं वही बाहर हूं, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और जितना मैं ट्रांसपेरेंट होऊंगा, उतना वाइब्रेशन लोगों को देता रहूंगा। तो मेरा नेचुरल स्वरूप, नेचुरल नेचर फरिश्ते का हो जाए, लाइट का हो जाए, प्रकाश का हो जाए। चलिए बैठते हैं, फिर से 4 मिनट बहुत पावरफुल सॉन्ग बजाएंगे, और उस गीत में हमें 500 स्वरूप का अनुभव करना है। और सबसे ज्यादा हमें अनादि स्वरूप का प्रैक्टिस करना है कि मैं अपने परमधाम में अपने सेक्शन में फिक्स हूं, कोई हलचल नहीं है। मैं अपनी मुक्ति और जीवन मुक्ति अवस्था में फिक्स हूं वहां पर, और वहां से मेरे को सत्युग आना है और जन्म लेना है। चलिए,
समय की तरह बह